ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये एक वंडरफुल सेशन है क्योंकि ये सेशन हमारे निजी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। आज इस संसार में जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन और कंपैरिजन शुरू हुआ है और यही कंपटीशन और कंपैरिजन धीरे धीरे हम सबके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या और द्वेष के बीज को बो चुका है और ये हमारे व्यक्तित्व में इस तरह बाहर उभर कर आ रहा है कि ये चिड़चिड़ाहट के रूप में, क्रोध के रूप में, अशांति के रूप में आज हमारे जीवन में आक्रमण कर चुका है। तो इसका अगर सोल्यूशन ढूंढने जाए तो क्या सोल्यूशन होगा? इसका एक ही सोल्यूशन है और जो स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा जिस पर ध्यान देते हैं और वो है क्षमा। कहने को तो फॉरगिवनेस बहुत इजी है लेकिन जब हम करने जाते हैं तो हमारे मन में छुपे हुए ईर्ष्या द्वेष हमें करने नहीं देते। आज हमारे सामने ऐसे कुशल वक्ता आदरणीय चंद्रकला दीदी जी उपस्थित हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं। उनके व्यक्तित्व से ही आप देख सकते हैं कि उनका अपना चरित्र ही उनके चेहरे की आभा से दिखाई देता है। उनके अपने कर्तव्य ही उनके गुणों को प्रदर्शित कर देते हैं। उनकी मधुर मुस्कान सबको हर चीज भुलाने में मदद करती है। ऐसे व्यक्तित्व वाली हमारी आदरणीय चंद्रकला दीदी जी का इस सभा में बहुत बहुत दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं नेहा बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी हम सबकी तरफ से हमारे दिल के उद्गार अर्थात गुणों के फूल चंद्रिका दीदी को पेश करें। नेहा बहन, मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी। चंद्रकला दीदी जी का जन्म पिंक सिटी जयपुर में हुआ है। जिन्होंने अपनी पीएचडी की है पॉलिटिकल साइंस में, साथ ही साथ जर्नलिज्म भी किया है। सबसे बेहतरीन बात है कि वो एयर जयपुर में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में सेवारत रही हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी आध्यात्मिक रही कि जहां उन्होंने सेवा की वहां उसकी अमिट छाप छोड़ी है। इसी के साथ साथ ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने इन वक्ता के द्वारा सभी का मार्गदर्शन करती आई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी लेकिन मैं चंद्रकला दीदी से इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सबसे मुश्किल कार्य है क्षमा करना, उसे हमें आसान बना कर दे देना। ओम शांति।
ओम शांति। एक और शब्द अभिवादन का और वो है अंग्रेजी का गुड मॉर्निंग। ये शब्द अंग्रेजी का कभी कभी मन में सवाल उत्पन्न करता है, जानते हो क्यों? क्योंकि हम ये शब्द यूज करते हैं गुड मॉर्निंग, पर कभी कभी मन में आता है मॉर्निंग गुड है, गुड है। सोचिए, गुड है और नित्य गुड रहती है। आज गुड है या नित्य मेरी मॉर्निंग गुड रहती है? बात तो या आनंद या सुख तो तब है जब मॉर्निंग नित्य गुड बनी रहे, तब उसका मजा है कि मेरी सदा सदा मॉर्निंग गुड है, सदा इवनिंग गुड है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं गुड ही गुड है, शुभ ही शुभ है। हिंदी में प्रयोग होता शुभ, सदा शुभ है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं सचमुच वो गुड, वो अपनापन, वो भाईचारा वो महसूस होता है। अगर वो नहीं है तो शुभ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेन देता है। मुझे एक बहुत सुंदर स्टोरी आज के सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई याद आ रही है। कहते हैं भगवान ने जब इस धरा पर मनुष्य को भेजा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा था, और वो सिंपल से इंस्ट्रक्शंस थे। कहा था कि तुम्हारे पास दो बैग्स हैं, एक पर जी लिखा हुआ है, एक पर बी लिखा हुआ है। ये जी वाला जो बैग है इसको आगे रखना है, और बी वाला जो बैग है उसको पीछे रखना है, बस। और शुरू में जैसे बच्चे को तैयार किया जाता है, माँ तैयार करके सब कुछ उसको दे देती है, फिर कहती है ऐसे ही रखना। प्रभु ने भी हमारे दोनों बैग सेट कर दिए, कहा ऐसे ही रखना। लेकिन मनुष्य कहीं कहीं अपनी सोच इस तरह से सोचता है कि मैं भी कुछ हूं। आते आते मनुष्य ने सोचा ऐसी क्या खास बात है, दोनों बैग एक जैसे, कोई भी हिस्सा कहीं भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। आज की भाषा यही है ना, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी कर लिया क्या फर्क है। उसने भी वही सोचा क्या फर्क है, दोनों एक जैसे हैं, इसमें इतना याद रखना, इतनी माथामारी मारने की क्या जरूरत है। और जब उसने ध्यान नहीं दिया और मन में ये आ गया इतनी माथामारी करने की क्या जरूरत है, तो नेचुरल था, स्वाभाविक था, वो कुछ भूल गया। और भूला ये कि वो जो बैग था नीचे आते आते उसने उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया, उसको पता ही नहीं पड़ा कि जी को भी आगे रहना था या जी को पीछे जाना था, उसको याद ही नहीं रहा। आपको याद होगा ना, जी को आगे रहना था या पीछे, आगे, जी आगे एंड बी पीछे। अब उसने उल्टा कर दिया, बी को आगे कर दिया और जी को पीछे कर दिया। तो यहाँ आके संसार में जब वो एक दूसरे के साथ व्यवहार में आने लगा तो बी बैड थिंग्स बुराइयां एक दूसरे की देखने लगा, ये ऐसा है। बहन सुना रही थी ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे के प्रति कहीं नफरत का भाव पैदा हो रहा था, कहीं ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा था, कहीं एक दूसरे के लिए ग्रज, गुस्सा, रिवेंज, ये सब अंदर ही अंदर जन्म ले रहे थे। इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, इसको तो मैं एक दिन देख लूंगा। इस तरह की भाषा अंदर ही अंदर जन्म लेने लगी, और धीरे धीरे ये शब्द बदलने लगे, अच्छाई की बजाय बुराई में कहने लगा, देखना बताऊंगा मैं इसको, देखना इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं माफी नहीं कर सकता। अब ये सब जो उसने जिंदगी में होल्ड करना शुरू किया, अपने मन पर, चित्त पर धारण करना शुरू किया, ये ऐसा है। किसी की अच्छाई दिखती भी थी तो कहने लगा ये तो अपने आप को ज्यादा समझता है, ज्यादा बुद्धिमान मानता है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो मालूम पड़ेगा, ये दिखावा करना चाहता है। यानी हर चीज में उसने क्या देखना शुरू किया, कमजोरी। तो कमजोरी को जहन में धारण करने लगा और बुराई को द बैक बिहाइंड। जो अच्छाई वाला बैग था तो अच्छाई को पीछे डालना शुरू कर दिया, और बुराई को आगे। अब जब अच्छाई पीछे उलट दी, बुराई आगे आ गई, तो कष्ट किसको मिलेगा? सोचकर देखिए, बुराई मेरे जहन पर आई है तो कष्ट कहाँ है? बोलिए, कहाँ होगा कष्ट? मेरे अंदर ना, क्योंकि दुख की अनुभूति मेरे पास है। साल भर पहले ऐसा हुआ था, मुझे आज तक याद है, लास्ट ईयर 22 सितंबर 2018 को इसने ऐसा बोला था। सोच कर देखिए, लास्ट ईयर डेट भी कई बार व्यक्ति बता देता, मुझे आज भी याद है। चार दिन पहले क्या खाया था वो याद नहीं है? चार दिन पहले मुस्कुरा के क्या बात की थी वो याद नहीं है? लेकिन साल भर पहले क्या कहा था वो याद है। और जब याद है तो उसका कष्ट भी बार बार माइंड पर फ्लैश हो रहा है, तरोताजा हो रहा है। हिंदी में एक बात कहते हैं, एक कहावत, गड़े मुर्दे उखाड़ना, या पास्ट की बातों के लिए भूत की बातें याद करना। अब भूत को याद करोगे तो क्या होगा? गांवों में कई बार चर्चा होती है, इसमें भूत आ गया, तो भूतों की बात को याद करोगे तो क्या आएगा? वही तो आएगा और वही तो खाएगा। क्योंकि मैंने याद किसका किया है, आह्वान किसका किया है? प्रभु का नहीं किया, अच्छाई का नहीं किया। क्योंकि जहां अच्छाई का वास होता है, लोग दुनिया में कहते हैं प्रभु वहां वास करते हैं। मैंने किसका याद किया? भूतों को, बुराई को, ईविल्स को, कि ये ऐसा है। वास्तव में कोई व्यक्ति बुरा नहीं, हमने उसकी बुराई को देखना शुरू किया और उसके आधार पर उसका नापतोल करना शुरू कर दिया कि यही ऐसा है। हर व्यक्ति में कहा जाता है कुछ अच्छाई है तो कोई एक आध कमजोरी भी है। मानते हैं ऐसा? है ऐसा? या टोटली सब में बुराई होती है? नहीं ना, नहीं ना, कहीं एक दो बुराई है तो अच्छाई भी है। और जहां हम में, स्वयं में अगर कुछ अच्छाई है तो मानते हैं कहीं हम भी कमजोर होंगे, कोई बुराई होगी? मानते हैं ऐसा? होगी ना, दूसरे में है, मेरे में भी तो होगी। क्योंकि हम कोई भी इंसान इस समय संपूर्ण नहीं है, नहीं है ना? अगर मैं किसी की बुराई का चिंतन करती हूं वो भी अपने आप में कमजोरी है, और वो बुराई देखते देखते मेरे अंदर मानसिकता में वो नॉट्स, रिलेशन में जो संबंधों में प्रेम होना चाहिए, अब उसकी जगह क्या हो गया? गांठें, गांठें हो गई। और जब कहा जाता है गांठें हो जाती हैं तो उनको तोड़ना और खोलना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन अब उन गांठों से, उस कष्ट से, उस दुख से मैं अपने आप को फ्री कैसे करूं? हल क्या है? हल क्या है? मेरी आपसे बनी नहीं, क्योंकि मैं आपकी बुराई देख रही हूं। अब बनी नहीं तो हल क्या है? नॉट्स आ गई, हल क्या है? सोचकर देखिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूं। मैं काफी छोटी थी, मेरी एक कॉलेज लाइफ में फ्रेंड थी, मुझे एज इट इज कॉपी करती थी। अब ध्यान से सुनना, मैंने जैसी ड्रेस पहनी, जैसे बाल बनाए, आज जो क्लिप लगाया, मैं देखती थी 2-3 दिन बाद उसके पास भी वही क्लिप है, वैसा ही है। मुझे बहुत हर्ट होता था, मैं कोई भी नई चीज नहीं पहन सकती, क्यों? क्योंकि वो उसके पास 3रे दिन होगी। मेरे को वो कॉपी कर रही है। अब मैं जब भी उसके साथ बैठती थी कॉलेज में, क्योंकि सब्जेक्ट्स एक से थे, तो साथ बैठती थी, मुझे ये लगता था आज ये मेरे को क्या कॉपी करने वाली है। मेरा मन स्टडीज की बजाय सारा टाइम ये देखता था, आज पता नहीं ये क्या देखेगी, तो शायद दुपट्टा कॉपी करेगी, अब ये करेगी, अब मेरे जैसे स्लीपर्स आई, अंदर में एक ही थॉट। तो चूंकि मेरा जुड़ाव संस्था से बचपन से ही था, तो यहां जो उस समय एडिशनल चीफ थी दीदी मनमोहिनी, मैं बाय चांस उन दिनों में यहां आई, तो मैंने उनसे सवाल किया और यही प्रश्न पूछा कि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे रोना आता है, मैं क्या करूं? वो मुझे कॉपी करती है, मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रही हूं। तो जानते हैं उन्होंने मुझे समाधान क्या दिया होगा, जो कि जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और वो समाधान उन्होंने मुझे सहज रूप में दिया, और वो था, आप ये क्यों सोच रही हैं कि वो तुम्हें कॉपी कर रही है तो तुम्हें परेशानी हो रही है? आप ये क्यों नहीं सोचते तुम्हें वो कॉपी कर रही है, इसका मतलब आप उस काबिल हो कि वो आपको कॉपी करे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि मुझे गाइड करना है, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है जो जीवन में वो भी सीखे। कॉपी करे अच्छी बात, आप अपने आप को सैंपल क्यों नहीं बना लेते? फॉलो किसको किया जाता है? जो लीड करे। तो आप 2 कदम आगे हैं, आपको खुश होना चाहिए। वो दिन था, मेरे अंदर से उसके प्रति जो भी बातें थी खत्म हो गई। अब मैं उसके साथ प्यार से रहती थी, वो कुछ भी लाती थी मुझे अच्छा लगता था, और अब मैं सजेस्ट करने लगी थी तुम्हें ये अच्छा लगता है तुमको वहां मिलेगा। उल्टा हो गया, मैं सजेस्ट करती थी देखो और भी तुमको अच्छा अच्छा मिलेगा, तुम देखना जाके। पहले सोच चलता था इसको शॉप किसने बताई, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर हम हृदय पर होल्ड ऑन करेंगे, बातों को जाल को अपने अंदर में रखेंगे, तो हृदय जाल से बुन जाएगा। तो क्या करूं? तो बहन ने हल दिया कि एक ही हल है, एंड दैट इज फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है? बात आती, क्षमा की अगर परिभाषा की जाए तो क्षमा का अर्थ क्या है? वैसे कोई अगर पूछे कि कहे हम दूसरे को क्षमा करते हैं, वास्तव में कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता। कर सकता? क्षमा वास्तव में अगर करना है तो मुझे अपने आप को करना है, क्योंकि मुझे चित पर नहीं धरना है। किसी की नकारात्मकता नेगेटिविटी मैं चित पर धर रही हूं, रख रही हूं। क्षमा करना माना ये नॉट लूज कर देना, अपने दिमाग से हटा देना. बी लाइट. आपका हृदय लाइट होता है. होता है ऐसा? होता है? आप अपने आप में महसूस करते हाँ मैंने अपने मन से उसको क्षमा किया, माना निकाल दिया. जिंदगी के कुछ सिद्धांत हैं, उनको हमें ध्यान रखना होगा. पहला, जिंदगी में आपका नियंत्रण कंट्रोल किस पर है? कहने को आप कहते हो मैं अपनी जिंदगी पे पूरा कंट्रोल रखती हूं, आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो? सोचिए, कर सकते हो? तो आप अपने ऊपर में से किसको कंट्रोल करोगे? सोचिए, दूसरे को नहीं कर सकते. राइट, 100% राइट. लेकिन मैं मेरे ऊपर जो कंट्रोल है, किन किन बातों में कर सकती हूं? सबसे पहली चीज, बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली चीज, माय थॉट्स. मुझे कंट्रोल कहां रखना है? माय थॉट्स. और जो ये थॉट मेरे आगे, जो इमेजेस, भावनाएं जो जनरेट करता है, मेरे मनोभाव, क्योंकि मेरे सोच का प्रभाव मेरे भाव पर आता है. मेरे भाव का प्रभाव मेरी वाणी पर आता है, यहां नियंत्रण. तो मेरे सोच पर, मेरी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण. और भावनाओं पर नियंत्रण के बाद तीसरा स्टेप आता है, मेरे एक्शंस पर नियंत्रण. और वही नियंत्रण हमारा लूज हो गया है. होना यहां चाहिए, नियंत्रण मैं सामने करना चाहती हूं, इसको बोला कि करता तो है नहीं. इसको कितनी बार समझाया है पर ये मानेगा नहीं, दूसरे को होल्ड करना चाहते हैं. मेरा होल्ड मेरे थॉट्स पर चाहिए. दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. मेरी भावनाओं पर चाहिए. वास्तव में मेरी भावनाएं ही दूषित होती हैं, तब हम दुखी होते. और उसी अनुसार मेरे एक्शंस जब आते हैं, लड़ाई के, झगड़े के, गलत बोल के, बदले के भाव के, फिर वो चेन बनती जाती है. मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा बोला, मैंने ऐसा, तूने. कंट्रोल कहां चाहिए? बिगनिंग. दूसरा एक लाइफ का सिद्धांत है जिसको हमें सदा याद रखना है, जो दुनिया भी प्रयोग करती है. जैसी एज यू सो, सो शैल यू रीप. जैसा बोगे वैसा ही काटोगे. जैसी करनी वैसी भर. मैं अगर गलत बोल रही हूं, गलत चाल चल रही हूं, उसका इफेक्ट कहां आएगा? मेरे पर या दूसरे पर? मेरे ऊपर आना है, किसी और पर नहीं आना. हम कई बार सिचुएशंस के लिए दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, पर एक सवाल पूछती हूं, मेरे दुख का कारण कौन? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। तो दूसरे को कैसे बोलते हैं कि इसके कारण, मेरे दुख का कारण मैं हूं, कोई और नहीं। ये सिद्धांत है, लेकिन यही हम भूल कर लेते हैं। मैं आपको एक घटना, जो भी बात मैं आपको सुना रही हूँ ये रियल घटना है। एक बार हमारा जयपुर के पास 32 किलोमीटर पर एक सेंटर है, और वो जो सेवा स्थान है उसके बिल्कुल बराबर की दीवार, नेबर्स, एकदम नेबर्स। तो जब वहां हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैंने नेबर्स को बुलाया, और इसलिए बुलाया क्योंकि अक्सर करके वो बाहर होता था, मिलता ही नहीं था तो कभी उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। और इन दिनों में 10-12-15 दिन में मैं देख रही थी नेबर्स हैं, बराबर वाली बिल्डिंग में मूवमेंट्स हैं। तो मैंने उसको बुलवाया, वो आया। मैंने कहा भाई मैंने तो आज आपको प्यार से बुलाया कि बराबर में रहते कौन है, उनसे मिले, जाने, देखें, परिचय तो हो। इतना बड़ा केंद्र आपके बराबर में है, हम लोग एक साथ रहेंगे तो जाने तो सही। बात बात में उसने बताया, मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं, तो जानते हैं उसने अपना प्रोफेशन क्या बताया। मैं समझती हूँ मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्रोफेशन किसी का नहीं सुना। आप सोच के देखिए, आप में से किसी का है तो नहीं, चेक करिएगा। उसने मुझे बोला बहन जी मैं कुछ नहीं करता। तो क्या करते हो भाई, तो क्या करते हो? बोला मेरे को अगर कोई एक शब्द भी बोल देता, मैं मार्केट में गया, किसी से मिला, कोई बात की, थोड़ा भी किसी ने मुझे बोल दिया, हालांकि बोलता मैं ही शुरू में गलत हूं ये भी जानता हूं, सोचिए, बोलता शुरुआत मैं ही करता हूं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं जो बोलता हूं ना मेरे मुंह से भिंजी गालियां निकल जाती हैं, और जब मैं बोल देता हूं तो सामने वाला लड़ने को तैयार होता है। शुरुआत कहां से है? खुद से। और सामने वाला जब लड़ने को तैयार हो जाता है मैं उसके ऊपर केस कर देता हूं, मैं यही काम करता हूं। ऐसा कई किसी का प्रोफेशन सुना, सुना आपने किसी ने? मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने कहा भाई तुम इतने केसेस, कितने केसेस कर दिए होंगे तुमने जिंदगी में इस हिसाब से? तो बोलता बहन जी 10-12 केस तो मेरे चल रहे हैं। और आगे क्या इरादा है, ये आ जाएगा तो कर दूंगा। मैंने कहा कभी सोचा है कि तुम अपने बच्चों को क्या देके जाओगे? अब तो तुम्हारी एज जो तुम आए हो, तुम्हारी एज काफी दिख रही है, कोई बात सपोज हो गई, हो नहीं ये अच्छी बात है, तो तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इसलिए सब बंद करो, सबको माफ करो, और सबसे वापस अच्छे संबंध बनाओ, उनको बोलो जा करके सॉरी। तो उसने मुझे जवाब दिया बहन जी, समझ गए ना, मैं ये सारे केसेस बच्चों को देके जाने वाला हूं, मैंने कहा वो क्या करेंगे फिर तुम्हारे केसेस लेकर के जिंदगी में? तुम अच्छी चीज देके जाओ, कोई अच्छी प्रॉपर्टी देके जाओ, तुम्हारा प्रॉपर्टी का काम है मेरे को ये मालूम है, पर तुम ये काम जो सुना रहे हो वो अलग किस्म का सुना रहे हो, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे मौके की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करो, ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं बहन जी, पुरखों से सुना है पुरखों तक लड़ाई जाती है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। यानी क्या हुआ? मैंने कहा बात लंबी हुई उससे तो सार ये निकला। मैंने कहा इससे परेशान कौन, तो दुखी तो मैं होता हूं क्योंकि सारा दिन आज ये केस है, आज ये केस है, आज यहां तारीख है, आज यहां तारीख है, नींद ही नहीं आती। पर फिर भी दुख का सुलटारा क्या है उस पर सोचने को तैयार नहीं था। तो वास्तव में ये जो हमने गांठें बांधी हैं, इसका भी यही एक सुलटारा है, सल्यूशन, समाधान है। और वो यही है, जब हम सबको एक बात पता है जीवन के सिद्धांत की, कि मेरे कहने से किसी को मैं नियंत्रण में नहीं ले सकती। ले सकती हो? मैं चाहूं कि मैं जो सुनना चाहती हूं वही वो बोले, पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो मेरा काम है सजेस्टिव रहना बस। आपका काम क्या है? आप बड़े हैं, साथी हैं बराबर के, छोटे हैं, आपके मन में कोई बात आती है, हमने सजेशन दे दिया, दैट्स ऑल एंड डिटैच। ये आध्यात्मिकता कहती है डिटैच। दूसरी बात, दूसरी चीज थी, हम वही इमेजेस अपने अंदर भाव पैदा कर लेते हैं कि सामने वाला ऐसा है। लेकिन आज से हमें एक बात सोचनी है कि सामने वाले के अंदर एक कमजोरी हो सकती है, बाकी उसके अंदर अच्छाई भी बहुत है, बहुत अच्छा। जिंदगी के हर रंग है, हर रंग बहुत अच्छा है। हो सकता है मुझे हरा रंग मुझे पसंद नहीं है, रंग ही खराब है। मेरा भी अपना एक नजरिया हो सकता है, हम अपने एंगल से कई बार देखते और सोचते हैं, होता नहीं होता है? हम अपनी भावनाओं के अनुसार सोचते हैं, मेरा बेटा है इसलिए ऐसा ही बोले। लेकिन मेरी भावनाएं अगर शुद्ध हो तो वो कमजोर भी अगर किसी चीज में है तो वो कमजोरी से उभर जाएगा। वरना अगर वो किसी बात में कमजोर है और आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम मानते नहीं हो, मानेगा? मानेगा? नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर के साथ आता और उसकी मदर बोलती है, बहन जी मैं इससे बहुत परेशान हूं, पढ़ता ही नहीं है, सुबह उठा उठा के थक जाती हूँ स्कूल के लिए, और फोर्थ में बच्चा पढ़ता है। इमेजिन, सुबह उसको उठा उठा के थक जाती हूँ, बस जैसे ही सुनेगा 7:15 हो रहा है तो उठेगा और भागेगा कि 7:30 स्कूल पहुंचना है, और सारा दिन पढ़ेगा ही नहीं, मैं इसके पीछे पीछे रहती हूं। तो उसको कहा, एक काम करना से, और वो ये, रात को इसको बता देना, बेटा मैं तुम्हें एक बार उठाऊंगी। अब उसके मन में, मां के मन में एक ही परेशानी, इसलिए बेटा अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उठता नहीं, एक ही कमजोरी हुई ना उसके कारण दुखी। तो उसका कहा, अच्छा उसको कहना रात को कि मैं एक बार तेरे को उठा दूंगी, फिर अपने आप उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, मैं दोबारा नहीं उठाऊंगी अगर आप सो गए तो। नवीन जी स्कूल में सो जाएगा, हर जाने दो दिन मिस होगा, तीन दिन होगा, उसके बाद उठेगा या नहीं उठेगा, क्या विचार है? उठेगा ना। वही हुआ, एक वीक के बाद जब वो माँ वापस केंद्र पर आई, लेडी बहुत खुश। मैंने कहा भाई आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात? बोला दीदी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा हो गया। क्या अच्छा हुआ सोचिए, क्या अच्छा हुआ कि अब वो बोलता है तुम्हारी जैसी माँ इस संसार में नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई? क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि तुम एक बार उठा देती हो, बार बार टूकती नहीं हो, और मुझे कुछ गलत नहीं कहती हो। पहले तुम मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, गलत बोलती थी, डांटती थी, कभी कभी गुस्से में आके बोलती थी मर जाए तो अच्छा है। हम कहां तक पहुंच जाते हैं? बहुत दुखी कर रखा है। अब तुम प्यार से हंसती हो, प्यार से मिलती हो, प्यार से खिलाती हो, टूकती नहीं हो। मैं अपने आप स्कूल जाता हूं, मुझे पता है जाना। क्या हुआ संबंधों में? छोटा सा सुधार। अपने अंदर गलत भाव को या इस प्रकार के भाव को छोटी छोटी बातों के कारण ना आने दे। क्यों? क्योंकि अगर वो भाव हमारे अंदर पैदा हो गए तो वही हमारा कर्म हो जाता है। कर्म में क्या आया? उसकी वाणी हो गई थी कि मर जाए तो अच्छा, ये कर्म है ना। और हमें एक आध्यात्म के नाते एक सिद्धांत पता है जो अपने चर्चा थोड़ी सी की, जैसी करनी, जो बीज बोएंगे फल वही आएगा। उसी के पास आना है, ये निश्चित है। किसी को खेती का अनुभव है? है किसी को खेती का अनुभव? पता है खेती? अच्छा है। खेती में आजकल तो साइंस के बहुत साधन निकल आए, सब कुछ मशीनों से होता है। पहले हाथ से बीज बोया जाता था और एक हाथ में हल होता था। ये हाथ बीज बोता था, इस हाथ में हल है, और जब फसल काटने का टाइम आता है तो फसल भी इस हाथ में है और इस हाथ में कटार है। बीज इसने बोया है, फल इसी हाथ में है। ये सिद्धांत कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। मान लीजिए मैंने सॉरी बोल भी दिया, इससे मेरा मन हल्का हुआ, पर जो मैंने गलती की है उसका फल आएगा या नहीं आएगा? क्या ख्याल है? आएगा, बीज तो बोया है ना। लेकिन मैं अब मानसिकता से ये तैयार हूं कि फॉरगिव करना, माना कि आज मुझसे भूल हुई, अब ये आगे से नहीं हो, क्षमा, अपने आप से भी क्षमा। दूसरे को तो हम कर नहीं पाते, सिर्फ यहां से मेरे अंदर भूल जाए, क्षमा करना माना चित्त पे से हट जाना। कभी कई बार कई लोग सॉरी शब्द को फैशन बना लेते हैं, देखा होगा ना, सॉरी सॉरी, फिर वही बात। फिर आप क्या कहते हैं? भाई इसने तो सॉरी को भी खा पी के रखा हुआ है, बार बार बार, बिकॉज वो अंदर से भाव नहीं है कि भाई ये भूल हुई है, ये दोबारा नहीं करनी है। और जब ये एहसास नहीं है तो बार बार संबंधों में टकराहट पैदा होती है। इसलिए मुझे बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है इसने ऐसा किया। याद रखिए एक और बात, हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार अनुसार कर्म अनुसार ही करेगी। हर एक का अपना अपना रोल है, उस रोल को आप चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो? कर सकते हो? घर में 5 बच्चे हो, 5 मेंबर्स हो, सब एक जैसे हो जाते हैं? होते हैं? एक ही माँ बाप के, एक ही फैमिली के सब अलग अलग होते हैं ना। इसलिए एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, खुश रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें स्वीकार करना होगा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये बात ऐसी है, मुझे डिटैच होकर चलना, ताकि न कड़वाहट हो न मेरे मन पर कोई गांठ आए। दुनिया के हिसाब से तो हम बहुत संभल कर चलना जानते हैं। कैसे? मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, सामने से अगर रॉन्ग साइड से ट्रक आए तो क्या करेंगे आप? अपने आप को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्या ख्याल है? या कहेंगे कि ये गलत है इसलिए मैं तो यहीं खड़ा हो जाता हूं, आने दो, टकराने दो। हमारे पास एक बहन ऐसी भी थी, स्कूटी चलाती थी, स्कूटी चलाती है, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा भाई कैसे गिर पड़ के आ गए, क्या हो गया? मुझे जो उसने आंसर दिया आज तक मैं नहीं भूली हूं, और ये बात कम से कम भी 10-12 साल पुरानी होगी, मैं भी नहीं भूली हूं। कारण, वो एक लाइफ का लेसन हो गया। उसने मुझे रिस्पॉन्स किया कि दीदी सामने से गाड़ी आ रही थी, रॉन्ग साइड थी। मैंने कहा ये रॉन्ग साइड है, ये हटे, मैं क्यों हटूं? मैंने कहा अब क्या हुआ भाई, इस सोच ने किया क्या? चोट लग गई। फिर मैंने उससे थोड़े दिन बाद पूछा, मैंने कहा अब तुमने इस बात से ये सीखा या नहीं कि नहीं कोई भी है, कुछ भी बात है, मुझे अपने आप को बचाना है। आज तो थोड़ी लगी, कल को कुछ भी हो सकता है ना। तो जीवन में जब हम बाहर घूमते हैं, करते हैं, उस बात को तो ध्यान में रखते हैं कि ये रॉन्ग साइड है, ये गाड़ी रॉन्ग साइड है, मुझे राइट साइड चलना है, मुझे थोड़ा सा अगर ब्रेक की जरूरत है तो मैं ब्रेक भी लगाऊं, साइड में लगाऊं अपनी गाड़ी। वी डोंट सी कि रॉन्ग साइड है तो मैं भिड़ा दूं। जीवन के सिद्धांत में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर गलती कहीं सामने वाले की भी है तो भी कष्ट मेरे अंदर आना है, मेरी नींद उड़ेगी, इसलिए मैं तो गलत ना करूं, मेरे गलत करने से नुकसान मुझे है। थोड़े दिन बाद भूलना भी मुझे होता है, फिर आप कहते हैं समय के साथ हील होगा, मैं पहले से ही क्यों ना संभलूं। फिर कई बार एक और बात देखने को आती है, और वो ये जो शुरू में एक बात कही थी, याद रखिए जीवन के एक लेसन्स में कि ये संसार में हम आए हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मुझे औरों को देखकर चलना है नहीं, जैसा मैं करूंगा। इस विश्व की स्टेज पर हम हैं, हमें देखने वाली बहुत आंखें, मुझे ठीक चलना है, मुझे एक्यूरेट चलना है। तो मन खुशी से भरा रहेगा क्योंकि मैं लीड करने पे हूं। मेरा रोल जो है वो ऊंचा है, गाइड करने का है। आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है वो आपको फॉलो करता है, वो भाषा नहीं जानता, बोलता नहीं है, लेकिन आप जो करते जाते हो वो पिकअप करता जाता है, होता है? आप बोलते हो तो भी वो पिकअप करता है, वो खुद कुछ नहीं जानता। पर छोटे बच्चों कई बार फैमिली मेंबर्स कई आदतें सिखा देते हैं, यूं यूं सिखाएंगे, अंगूठा दिखाना सिखाएंगे, वो भी सीख जाता फटाफट। कैसे सीखा? फॉलो कर रहा है। हम वो करें जो कोई भी फॉलो करे तो मुझे अच्छा लगे, और वही आध्यात्मिकता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आप ऐसा चलो जो बातें ही ना हो, जो आप दुखी हो जाओ, क्योंकि आप एक एक का इम्पैक्ट अपने घर में भी पड़ता है, प्रोफेशन में भी आता है। बहुधा मैं ऐसा भी देखती हूं कई बार, कई लोग बोलते हैं ये पर्सनालिटी ऐसी है, इनके आगे हम कुछ नहीं बोल पाते, कोई और होता तो देख लेते, ये तो फादरली फिगर की तरह है, इनकी हर बात अच्छी लगती है। ये आपका जो बिहेव है, कुशल व्यवहार है, ये छाप छोड़ता है। इसलिए क्षमा करने का मतलब है सबके प्रति मेरा शुभ भाव हो, कल्याण का भाव हो, स्नेह का भाव हो, बढ़ने बढ़ाने का भाव हो, गिरने गिराने का नहीं, तब रियल सेंस में क्षमा है। क्षमा माना ये नहीं है ठीक है गलती कर दी, आज तो तुम सॉरी कह रहे हो ठीक है, फिर हुई तो देख लेना। दैट मीन्स मैं प्रिपेयर्ड हूं उसको फिर से आजमाने के लिए। जीवन आजमाने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए बना है, जीवन खुश रहने के लिए बना है। पूछिए अपने आप से, आप खुश चाहते? कौन कौन खुश रहना चाहता है, हाथ खड़ा करो। कौन कौन जिंदगी में प्यार चाहता है, हाथ खड़ा करो। सोचिए, जीवन खुशी के लिए, जीवन प्यार के लिए, स्नेह के लिए, हम सब, वी ऑल, हम सब ब्लिस चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कष्ट नहीं चाहते। तो कष्टों को मुझे अंदर में नहीं लेना, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। आप जो देखते हैं थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं वो आपके अंदर उतर जाता है, ये नेचुरल है। आपने बुराई देखी है ऐसा है, इतना सा सोचा ये ऐसा है, आपके अंदर वो गलत भाव पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए बुराई को नहीं देखना, ख्याल भी आए ना तो उसी समय मन को दूसरी दिशा देनी है कि इसमें अच्छाई भी है। आज कारणे अकारणे कोई बात आई, भूल हुई, लेकिन ये व्यक्ति बहुत भला है, आज तक इसने अच्छाई भी तो की। आज मुझे कुछ ऐसा कह दिया, उसकी मनोस्थिति हो सकता है उस समय ऐसी हो, फिजिकली हो सकता है वो उस समय फिट नहीं है। कई बार आपने ये भी देखा है, आप खुद भी कई बार कह देते हैं पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया, कहना नहीं चाहिए था, हो गया। उसके उस समय वीक इमोशंस काम कर रहे हैं, मैं उसको अपने स्ट्रांग इमोशंस दूं, वो भी ठीक हो जाएगा, हो सकता है ना, पॉसिबल। क्योंकि मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे वही देने का काम करना है। आपने कई बार मंदिर में या ऐसी कई बार बातें सुनी होंगी कि इसने जीवन में ये सब्जी नहीं खाता क्योंकि इसने दान नहीं किया है। सुना है कई बार ऐसा लोग आपस में कर देते हैं, ये मीठा नहीं खाता, इसने शायद मीठा अपनी लाइफ में दान नहीं किया है, तो अगर मैं खुश नहीं हूं इसका मतलब, सोचिए बोलिए, मैं खुश नहीं हूं इसका मतलब, मैं शांत नहीं हूं मेरा चित शांत नहीं इसका मतलब, मैंने शांति मैंने खुशी किसी के साथ शेयर नहीं की, दी नहीं। अब मुझे यही काम करना है, यही सच्ची फॉरगिवनेस, मैं सबको प्रेम दूं, शांति दूं। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो कई बार कई लोग कह देते हैं, मिन जी हम आध्यात्मिक लोग थोड़ी हैं, हम तो साधारण इंसान हैं, हम साधारण इंसान हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं माफ कर पाते, क्या सोचते हो आप भी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते। साधारण और आध्यात्मिक क्या होता है, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं एक्चुअली, अब साधारण नहीं है, साधारण मींस कमजोर, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमने सिर्फ एक ही बात गलती कर दी है, और वो कौन सी है, हम एक घंटा अगर मंदिर में जाते हैं तो सोचते हैं एक घंटे के स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम यहाँ आके प्रार्थना करते हैं, हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, लेकिन एक्चुअली टोटालिटी में हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमारा हर कर्म हमारी वैल्यू के साथ जुड़ा है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, जहां आपकी स्ट्रेंथ है, जहां आपकी क्वालिटीज काम कर रही हैं, जहां आपकी वैल्यूज काम कर रही हैं। हमारी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार हमारे यहां हर काम अपने इष्ट की याद से होता रहा है। सुबह उठते हैं लोग, पहले याद करिए अपने घर में दादी नानी जो भी बुजुर्ग, जो वो घंटी बजाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, कुछ ना कुछ सुबह उठ करके, कोई गीता पढ़ता था, कोई कुछ, फिर खाना खाते थे तो भी दो मिनट, कई कई फैमिलीज में आज भी मैं देखती हूँ मंत्र उच्चारण करके, आपने देखा है बिजनेस वाले लोगों को, बिजनेस पर जब जाते हैं तो वहां पर भी वो अपने पिक्चर्स उनके इष्ट के लगे हुए होते हैं, उनका अगरबत्ती वगैरह कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर मान्यता, क्यों सोचिए आज हम नहीं करते हैं, पर ये एक्चुअली क्यों आया, ताकि मेरे अंदर की जो सोच है, मेरा जो वे है करने का, वो पॉजिटिविटी के साथ, उनका ध्यान करने का भाव ऐसा नहीं आज आपको कहती हूँ कि वो फिर से ध्यान करो या नहीं करो, बट एक पॉजिटिविटी का, सब बहुत अच्छे, मुझे अब इनसे व्यवहार में आना है, ये बहुत अच्छे, मेरा इनके साथ लेन देन है, मैं पहले से ही अपने माइंड में ब्लॉक्स नहीं करूं, पता नहीं पता नहीं, फलाने के साथ तो इसने ऐसा कर दिया, पता नहीं, मुझे पता है वहां मैं संतुलित हूं, लेकिन बिहेव मेरा पॉजिटिव है, मेरे अंदर में कोई गांठ नहीं है, सामने खड्डा है, मुझे पता है क्रॉस करना है, तो मैं साइड से जाऊं ना, जाऊंगी तो सही ना, उस चीज को, उसकी उस कमजोरी को समझते हुए बाकी तो डील करेंगे ना। तो फॉरगिवनेस अर्थात अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किसी के प्रति भी हमें नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनाना, साथ ही साथ मुझे खुश रहना है, ये मेरा फैसला है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है, तो मुझे सदा प्यार और खुशी ही बांटनी है, मैं वही करूं, और जब मैं वही करूंगी, प्यार ही बांटूंगी, खुशी ही बांटूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? आप देखिए, कई बार वॉकिंग पर लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, वॉकिंग पर जाते हैं, बहुत बार आप कईयों को जानते भी नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम हो जाता है दो चार दिन बाद ये आपके साथी हैं, रोज आपको वॉक पर मिल रहे हैं। एक दिन आप स्माइल पास कर देते हैं तो वहां से क्या मिलता है? अब कितना खुश होते हैं, आज मैंने एक न्यू रिलेशन डेवलप किया, हम लोग स्माइल करके आपस में मिले। तो आपने जो दिया है वही लौट कराना है, इसलिए जिंदगी में खुशी बांटिए। संभव है, एक बात सुनाकर मैं आपको पूरा करूंगी कि एक बार एक फैमिली थी, और वो फैमिली में उसने सुनाया आकर के लेडी ने कि मैंने अपने 10 साल हो गए अपने बेटे से बात नहीं की। सोचिए, 10 साल हो गए मैंने बेटे से बात नहीं की। मैंने कहा क्यों? दीदी वो बड़ा अभिमानी है, हम आखिर तो पेरेंट्स हैं, छुपकर चलना चाहिए, बहुत अभिमानी है, उसको बहुत अपने पैसे का नशा हो गया है, अरे जिंदगी भर तो हमने खिलाया पिलाया, आज उसको पैरों पे हमने खड़ा किया, आज वो अभिमानी हो गया, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो, क्योंकि तुमने बोलना छोड़ा है तो परेशान क्यों? दीदी दुख तो होता है ना, अंदर में क्या है? दुख, याद तो आती है ना, आखिर तो मेरा बेटा है ना। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम उससे संबंध फिर से चाहती हो? उसकी आंखें भर गई, दोनों थे हस्बैंड वाइफ। दीदी मेरे को लगता है मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को, जो उसको सस्टेनेंस मिलनी चाहिए थी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की, वो नहीं दी, मैंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की, वो देनी चाहिए थी, मुझे उससे मिलना चाहिए था, मुझे उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, पर उसका अभिमान देखकर मैं दूर हो गई। मैंने कहा उसने तुमको कुछ कहा तो नहीं? तो नहीं। तो हमने उससे कहा कि आज एक काम करो, जाओ उसके घर जाओ। बोला दीदी बिना बताए, बिना उसके बुलाए कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा ये कौन सा सेंटेंस है, बिना बताए बिना बुलाए कहीं ये भी तो अभिमान है या नहीं है? है? जो मुझे रोक रहा है हमारा कहीं ईगो हमें कष्ट का कारण बनता है, हम नहीं भूल पाते, हम नहीं भुला पाते, हम माफ नहीं कर पाते, ईगो प्रॉब्लम का। जाओ कोई बात नहीं, माँ हो बाप हो बच्चा तो बच्चा रहेगा, जाओ। सोचा था मैंने, पता नहीं, ठीक है जो होगा कल मालूम पड़ेगा। दो दिन वो नहीं आए, कोई बात नहीं, अब नहीं आए तो पूछा भी नहीं मैंने। तीसरे दिन वो आए, मैंने पूछा क्यों भाई आप ठीक हो, दो दिन नहीं आए, तबीयत ठीक है या मेरी बात आपको कहीं कष्ट तो नहीं दे गई? अगर कष्ट दे गई तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ। मैंने तो एक बात सुझाई थी, बोला दीदी आप ऐसा नहीं कहो, हम गए थे लेकिन मैं अपने बेटे से बात नहीं कर पाई उस समय। उस समय बेटे ने ही दरवाजा घर का खोला, वो मुझे देखता रहा एक मिनट के लिए और मैं उसको देखती रही, पर मैं बोल नहीं पाई। बेटे ने दरवाजा खोला, साइड हो गया, एक मिनट बाद मैं अंदर चली गई। मदर फादर दोनों, और अंदर जाकर मैंने उस पोती को उठाया और गले लगा लिया। तो बेटे की भी आंख में आंसू थे, माँ की भी आंख में आंसू थे, और फिर मैं बेटे से गले लग गई और मैंने उसको बोला कि आज मेरे जीवन का बोझ उतर गया। फिर से मैं तुम्हारी वही मां हूं जिसने मैंने तुमको पालना दी है। क्या हुआ? ये क्षमा, दिल से उतार देना कोई भी कमजोरी को। वो संबंध फिर से हो गए, खुशी होती है ना सुनकर, खुशी आती है ना कभी हम ऐसा सोचते हैं तो सुनते हैं। वो पुनः संबंध मधुरता में बदल जाएं, उसके लिए एक स्टेप यहां हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम झुकते हैं तभी किसी को झुका सकते हैं। सत्य है सत्य, झुकते हैं तभी झुका सकते हैं। अभिमान वश अगर करते चलेंगे तो ये दीवार, अंग्रेजी में आए जब सिंगल लिखते ना तो चाइना की दीवार बन जाती है, लेकिन अगर बीच में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? मिलकर चलना है। तो मैं समझती हूं हम इस कैंपस में आए हैं, बाबा के स्थान पर आए हैं, सिर्फ मन और बुद्धि को खुला रखिए कि सचमुच मैं आत्मा इन शक्तियों से भरपूर हूं। धैर्यता, मधुरता, सरलता, नम्रता, मैं स्वयं शांत चित हूं, प्रेम स्वरूप हूं, देने वाली हूं। तो स्वतः कब आप क्षमा कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, बातों से ऊपर उठ जाएंगे, ये बातें नीचे रह जाएंगी। लेकिन ये आत्मचिंतन, आत्म शक्ति को अपने अंदर यहीं से भर करके जाना है, जिसको वहां व्यवहार में यूज करना है। रोज सवेरे उठकर ये यूज करें, मैं शांत, सब बहुत अच्छा, सबका कल्याण, सब आगे बढ़े। अब ये शुभ भावनाएं सवेरे सवेरे सबको दिए तो आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा। ये स्नेह देना है और निस्वार्थ होकर सवेरे दीजिए, उसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है, जो आप यहां सीख भी रहे। तो सवेरे उठ कर ये अभ्यास ओम शांति। सभी इसी थॉट में अपने अंदर जागृत करके बैठेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा सबको शुभ भावनाएं श्रेष्ठ भावनाएं दे रही
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है।